اللهم صل على محمد وآل محمد.
زبان کی آفت ہے ہمارے اخلاق کی بھی تھوڑی، کیونکہ 15-15 منٹ ہر ایک چیز پہ گفتگو ہوتی ہے، تو علم اخلاق کے اندر جو زبان کی آفتیں تھیں اس کے اندر سے 8 آفتیں تو زبان کی بیان ہو چکی. 9ویں آفت کا بیان آج ہوگا اور وہ ہے جھوٹی قسم کھانا. اچھا، اس حوالے سے بھی عورتوں کے اندر بھی خاص طور پر یہ بات نوٹ کی گئی ہے، جھوٹی قسم کھانے کا رواج زیادہ پایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتوں میں. اور کیونکہ یہاں زیادہ تر بچوں کی اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی بھی تعداد زیادہ شریک ہوتی ہے، اور ان کو بھی بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے کہ مثلا گھر میں کوئی سودا لینے بھیجا اور وہاں سے کچھ پیسے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے اور قسم کھائی کہ میں اتنے کا ہی لے کر آیا ہوں وغیرہ. اس قسم کی باتیں عام طور پر پائی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ تھوڑی سی کیونکہ زبان کی آفت ہیں، تو بڑوں کے لیے بھی ویسی آفت ہے. اب بچوں کو اگر ابھی سے اپنے آپ کو اس حوالے سے نہیں بچائیں گے تو بعد میں جب زبان پر یہ عادتیں جاری ہو جاتی ہیں تو پھر تو روکنا اور کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تھوڑی سی گفتگو ہماری جھوٹی قسم پر. امام نے جہاں گناہ کبیرہ کی فہرست بتائی ہے تو اس میں 18ویں نمبر پہ گناہ بتایا ہے، ومنہا الیمین الغموس. گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے جھوٹی قسم کھانا. اور پھر اس کا جتنا، یعنی قرآن کے اندر شاید ہی کوئی اور ایسا مقام ہو کہ جھوٹی قسم جیسا جھوٹی قسم کا بیان ہے کہ جس میں اتنے زیادہ عذاب ایک ساتھ بتائے گئے ایک ساتھ. والذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، وہ افراد کہ جو کہ جھوٹی قسموں کے لیے خدا کے نام کو استعمال کرتے ہیں، ثمنا قلیلا، جبکہ ان کے ہاتھ بہت ہی کم مال آتا ہے. وہ جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں تب بھی بہت ثمنا قلیلا، بہت ہی حقیر قسم کا مال ان کے ہاتھ میں آتا ہے. جیسے کہ اکثر دکاندار بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں باجی خدا کی قسم میں نے اتنے بھی کپڑا خریدا تھا آپ کو، جیسے عورتوں کو جس طریقے سے بیچتے ہیں. بات پہ قسم کھانے کی مثلا اس حوالے سے عادت ہو جاتی ہے، بہت ہی کم مال جبکہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے. اولا، اچھا اب ان کا عذاب دیکھیے، ایک ساتھ عذاب بتائے گئے، اولائے کا لا خلاق لہم فی الاخرہ، اب آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لا یکلمہم اللہ، خدا ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، خدا ان کی طرف نظر رحمت بھی نہ ڈالے گا. ولا یزکیہم، خدا ان کو پاک و پاکیزہ بھی نہ کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب الگ سے بھی تیار کر کے رکھا ہوا. یعنی کسی بھی گناہ کے متعلق اتنے سارے عذاب ایک ساتھ خدا نے کبھی بھی نہیں بتایا جو جھوٹی قسم کے متعلق ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو کہا ولا یزکیہم، خدا ان کو پاک و پاکیزہ نہ کرے گا، تو پاک و پاکیزہ ہونے کے بھی قیامت کے دن بہت سے طریقے ہیں جو کبھی اور آئیں گے. مثلا اس میں شفاعت بھی ائمہ کی، معصومین کی، علماء کی، دوستوں کی، نیک اور صالح مومنین کی، شہداء کی، ان سب فرشتوں کی، ان سب کی شفاعت بھی ملے گی. تو جو جس کا جتنا کیلیبر ہوگا وہ اتنی اتنی شفاعت کرواتا رہے گا، اور مومن اتنا ہی پاک و پاکیزہ ہوتا رہے گا، جھڑتے رہیں گے اس کے گناہ اس حوالے سے. تو وہ افراد کے جن کے پھر بھی گناہ موجود ہیں، خدا ان کو پاک و پاکیزہ نہیں کرے گا. تو یعنی جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں ان انداز سے ان کے گناہ بھی ان سے نہیں جھاڑے جائیں گے. تو اتنے سارے عذاب تو ایک ساتھ اس کے لیے بتائے گئے ہیں. اچھا، ہماری شاید بہت پہلے اس موضوع پر گفتگو بھی ہو چکی ہے جھوٹی قسم پر، لیکن تھوڑا سا اس کا تذکر ہو جائے کیونکہ براہ راست زبان کی آفتوں سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے قسم کے عربی میں 3 نام ہیں. ایک تو قسم جو ہم عام طور پر کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس طریقے سے عام زبانوں پر رائج ہے. دیکھیے اس کی تو سب کو معلوم ہے کہ 2 قسمیں. ایک تو یہ کہ جو بندہ خدا سے کھاتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں گا فلاں کام نہیں کروں گا، یہ تو وہ قسم ہے کہ جس کو توزیل مسائل میں زیر بحث لایا گیا ہے، جس کے مسائل لکھے گئے ہیں، اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے آج کی گفتگو کا. وہ قسم کہ جو کہ ایک بندہ دوسرے بندہ مومن سے کھاتا ہے، خدا کی قسم میں نے تم کو پیسے واپس کر دیے، خدا کی قسم میں نے تم کو کتاب واپس کر دی. اس قسم کے جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں اور قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہ والا ہمارے آج کا گفتگو کا موضوع ہوگا. تو ایک تو قسم، دوسرا اس کو کہتے ہیں حلف، حلف اٹھانا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے جس طریقے سے جھوٹے حلف اٹھائے جاتے ہیں عدالتوں وغیرہ کے اندر. اور تیسری ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں یمین. دیکھیے یمین عربی میں کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، اصحاب یمین اور اصحاب یسار، اصحاب یمین اور اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، قرآن کی بھی اصطلاح ہے. تو عربوں میں قاعدہ تھا کہ جب بھی قسم کھاتے تھے دکاندار دوسرے دکاندار کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں نے اتنے ہی پیسوں پہ یہ چیز خریدی ہے جس پہ میں تم کو دے رہا ہوں بالفرض، تو دوسرا بھی اس کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ مارتا تھا، اس طرح وہ معاہدہ ہو جاتا تھا. इस वजह से अरब के लोग इस तरह के कसम खाने को यमीन कहने लगे, इसी वजह से इसका एक नाम यमीन भी कहा गया। तो कसम, हल्फ और यमीन, ये तीन नाम है। लेकिन जो झूठी कसम है इसके भी अरबी में तीन नाम है, ये मैं थोड़ा सा बता दूंगा। इसका नामों से भी पता चलता है, देखिए कि अगर नामों की हमें वजह पता चल जाए तो हमें थोड़ा सा फलसफा से भी आगाही हो जाती है उसकी। एक तो अलयमीनुल काज़िबा, झूठी कसम। एक को कहते हैं अलयमीनुल गमूस, झूठी कसम का एक नाम है यमीन गमूस। गमूस कहते हैं अरबी में गर्क हो जाने को, धंस जाने को, दलदल में उतर जाने को। उलमा कहते हैं कि जिस तरीके से इंसान दलदल में धंसता रहता है और अपने सांस और हर चीज से महरूम होता चला जाता है, इस तरीके से इंसान अगर झूठी कसम खाना शुरू कर दे तो कुफ्र शिर्क में इस तरह धंसने और गर्क होने लगता है कि फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इस तरीके से इंसान की जिंदगी आखिरी रमक भी, यानी फिर वो जितना हाथ भी चलाता है दलदल में उतना ही अंदर धंसता चला जाता है। इसी तरीके से एक दफा कसम खाने की आदत हो जाए तो बस उतना ही वो अजाब खुदा में गर्क होता चला जाता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया यमीन गमूस। ये बच्चों को भी हमें खासतौर पर जब क्योंकि बैठे हुए भी इस हवाले से, इनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी बात होनी चाहिए। और तीसरा अरबी में एक और नाम है इसका, उसको कहते हैं अलयमीनुल हालिका। अच्छा, हालिक कहते हैं अरबी में हज्जाम को। जब भी नाई की दुकानें जो होती हैं उनको कहा जाता है सालून अल हल्लाका, यानी जो बारबर और नाइयों की दुकानें होती हैं उस पर लिखा होता है ना सालून अल हल्लाका, यानी नाई की दुकान। उलमा कहते हैं जिस तरीके से नाई बालों को काटता है, बालों पर जब कैंची चलाता है तो बाल नीचे गिर के झड़ने लगते हैं, तो इसी तरीके से इंसान इसको अल यमीनुल हालिका इस वजह से कहते हैं कि जब इंसान झूठी कसम खाना शुरू कर देता है तो इसी तरीके से उतना ही तकवा परहेजगारी उसके जिस्म से, यानी रूह से कट कट के अलग अलग होती रहती है। इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया अल यमीनुल हालिका। अल यमीनुल काज़िबा, अल यमीनुल गमूस और अल यमीनुल हालिका, धंस जाने वाली अजाब खुदा में, गर्क हो जाने वाली अजाब खुदा में और तकवा परहेजगारी को दूर कर देने वाली इंसान की रूह से इसको कहा जाता है झूठी कसम। अच्छा, देखिए एक सिर्फ इस हद तक इसकी अहमियत, अब देखिए रसूल की जबान से थी कि रसूल के पास इमराउल कैस नाम का एक शख्स आया, हज़ार मौत से इसका ताल्लुक है। हज़ार मौत सऊदी अरब और यमन के दरमियान का एक इलाका है, मदीने से तो इलाका का सैकड़ों मील दूर है। बहुत दूर से ये शख्स रसूल के पास आया, एक खेत का मसला था कि या रसूल अल्लाह एक और आदमी भी उसके साथ था, इस शख्स ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया। अच्छा देखिए, एक मैं थोड़ी सी इस मुतालिक बात बता दूँ कि इस्लाम का निज़ाम अदालत ये है कि अगर मैं आपकी किसी चीज़ पर दावा करूँ कि मसलन ये मकान मेरा है, तो हाकिम शरा कहेगा ठीक है आप गवाह पेश कीजिए, जो मुद्दई है उससे गवाह मांगे जाएंगे। अगर ये गवाह पेश कर दे दो आदिल तो चंद शराइत का ख्याल रखते हुए मेरे हक में फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास गवाह नहीं है तो फिर जो दूसरा शख्स है जिसके कब्जे में मकान, उससे कहा जाएगा ठीक है तुम कसम खाओ कि मकान तुम्हारा है। अगर वो कसम ना खाए तो फिर कसम इस शख्स की तरफ पलटाई जाएगी कि अब तुम कसम खाओ कि मकान तुम्हारा है, वो कसम खा ले तो उसके हक में फैसला हो जाएगा। पहला चंद शराइत का ख्याल रखते हुए इमराउल कैसा है, या रसूलुल्लाह इसने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया। रसूल ने कहा इमराउल कैस दो गवाह पेश कर। इमराउल कैस ने कहा या रसूलुल्लाह मेरे पास गवाह नहीं। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत सी चीज़ें दे देता है दूसरे को लेकिन गवाह नहीं होते उसके पास। अगर गवाह होते तो वहीं हज़ारे मौत में उसका फैसला हो जाता, यानी पड़ोस जो रिश्तेदार हैं वो दबाव डाल सकते हैं अगर गवाह हो। या रसूलुल्लाह मेरे पास गवाह तो नहीं। तो रसूल ने कहा अच्छा ठीक है फिर इससे मैं कसम, इससे कसम खिलवाई जाएगी जो दूसरा शख्स है। इमराउल कैस कहने लगे या रसूलुल्लाह ये तो फौरन कसम खा लेगा, झूठी कसम खा लेगा, मकान तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, मुझे तो पता है कि मेरा मकान है। रसूल ने कहा इमराउल कैस तुमने क्या समझा झूठी कसम खाने का, अगर ये शख्स झूठी कसम खाकर इस मकान को ले भी गए तो ये बात याद रखो वो मकान तुमको दोबारा आकर मिलेगा। वजह इसकी है कि खुदा कभी भी इस बात को पसंद नहीं करता कि लोग उसके नाम को झूठी कसम में इस्तेमाल करके लोगों को उनके हक से महरूम कर दें। यहाँ तक रिवायात के अंदर मिलता भी है जो इमाम खुमैनी ने भी अपनी तहरीर वसीला की दूसरे जिल्द में लिखा है, कहा कि पतियातुर एक रिवायत है पतियातुर रहम बल यमीनुल काज़िबा, रिश्तेदार के हक को अदा ना करना, उनसे पता ताल्लुक कर लेना, बल यमीनुल काज़िबा और झूठी कसम खाना, ये ऐसे गुनाह हैं कि ले यज़रानत दियार वतन कल लानर रहम, ये तो अगर ये गुनाह हो जाए तो बस्तियों की बस्तियां वीरान हो जाती हैं, वतन कल लानर रहम और इंसान की नस्ल ही मुनक़ता हो जाती है। लोगों ने पूछा इमाम से मौला ये बस्तियां तो वीरान हो जाती हैं समझ आ गया, लेकिन आखिर नस्ल किस तरह मुनक़ता होती है। कहा कि या तो उसके औलाद ही नहीं होती या औलाद होकर मर जाती है या इस हालत में मुब्तला हो जाती है कि दर दर भीख मांगने मजबूर हो जाती है, और जब बाप आलम आखरत से अपनी औलाद का मुशाहिदा करता है तो खुदा से दुआ करता है काश परवरदिगार ये औलाद पैदा ही ना हुई होगी। यहाँ तक झूठी कसम खाने का, देखिए कहाँ तक इसके नुकसान फिर जाएंगे। और यहाँ तक मिलता है रिवायत के अंदर, देखिए बहुत से आपको भी मालूम होगा कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं बाहर के ममालिक में कि अगर आप उन पर फ़ौरन डायल कर दें तो फ़ौरन एमरजेंसी का जो स्क्वाड है वो आपके पास आ जाता है। यहाँ पे 134 के नाम से नंबर है लेकिन वो तो सर बिल्कुल काम नहीं करता है। लेकिन ये कि बाहर सुना है कि ऐसा कुछ नंबर है कि फौरन इमदाद आ जाती है। हदीसों में मिलता है कि अगर तुम सबसे ज्यादा जल्दी फकर व फाका को बुलाना चाहते हो तो झूठी कसम खाना शुरू करो, क्योंकि इससे ज्यादा फकर व फाका जल्दी आने की कोई चीज़ है ही नहीं। इधर आपने झूठी कसम खाना शुरू की, बस देखिए फकर व फाका आना शुरू हो जाए। कतियातुर रहम वल यमीनुल काज़िबा, एक और रिवायत के मुताबिक युबारिज़ुल्लाह बे, जो खुदा जो रिश्तेदार के हक को अदा नहीं करता और झूठी कसम खाता है वो ऐसा ही है जैसे फकत बारज़ल्लाह, ऐसा ही है कि जैसे गोया वो मैदान जंग में निकल कर खुदा से कहे परवरदिगार खुदा मैंने तेरे कानून को तोड़ा है, मैंने रिश्तेदारों से ताल्लुकात भी कदा कर ली, मैं झूठी कसम भी खाता हूँ, है तुझमें मुकाबला हिम्मत के मुझसे आकर मुकाबला करे मैदान जंग में, आ और मुझसे आकर मुकाबला कर, गोया वो शख्स ये कह रहा है। ये अलकतियातुर रहम वल यमीनुल काज़िबा युबारिज़ुल्लाह बे, मैदान जंग में निकल के खुदा से कहता है परवरदिगार मुझसे आके जरा मुकाबला तो करके दिखा, मैंने तेरे कानून को तोड़ा। इस हद तक गई कितने खतरनाक ये देखे, और बड़ा शायद इसमें गौर फिक्र करने की बात है, हर जगह कतई रहमी और झूठी कसम, ये दो चीजें बहुत साथ साथ रिवायतों के अंदर अक्सर आई। अच्छा, अब आप बस मैं एक जल्दी से इसकी चंद अकसाम बता दूं। देखिए अकसाम, एक तो है हराम कसम की 5 कसम, एक तो एक को कहा जाता है हराम कसम। हराम कसम देखिए, एक तो ये है कि आप झूठी कसम खाएं, जो आप झूठी कसम मोहसन खुदा की कसम मैंने आपको पैसे वापस कर दिए, आप जबकि आपने पैसे वापस नहीं किए, खुदा की कसम मैंने आपको चीज़ दे दी जबकि आपने चीज़ नहीं दी। एक तो इस तरीके से कसम खाना होता है सीधे तरीके से, एक होता है उल्टे तरीके से कसम खाना, उसको कहा जाता है कसम बरात। अगर मैंने आपके पैसे वापस ना किए तो मैं मुसलमान ही नहीं, अगर मैंने आपके चीज़ आपको वापस ना की हो तो गोया मैं अली का मुहिब नहीं, मैं अली का जानने वाला नहीं, मैं शिया नहीं, मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरीके से लोग कसम बरात इस कस्म की कसमें खाया करते हैं, तो रिवायतों में यहाँ तक मिलते हैं अगर किसी ने कसम बरात खाई, चाहे वो कितने अहम तरीन मामले पर अपनी सच्चाई साबित करने के लिए क्यों ना खा रहा हो, तो वो रसूल कहते हैं वो फिर भी मुझसे बरी हो जाता है, यानी चाहे वो सच्चाई क्यों ना हो मैं उससे बरी हूँ, फिर मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो कसम बरात तो कभी भी इंसान ना खाए। देखिए झूठी कसम तो छोड़िए, सच्ची कसम भी खाने की इजाज़त नहीं, सच्ची कसम भी खाने की इजाज़त नहीं। यहाँ तक मिलता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए कि मौला ने एक ऐसी औरत से शादी की कि कुछ अरसे बाद दुश्मनी अहले बैत उससे ज़ाहिर हुई, कि मौला कायनात के सिलसिले में उसके दिल में बोझ और अदावत पाया जाता था, नासिबी थी। अच्छा देखिए, नासिबी अगर कोई औरत हो जाए तो वो तो निकाह में फिर बाकी नहीं रह सकती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उसको तलाक दे दी। अच्छा देखिए, अब लोग फिर ये कहते हैं कि जब इमाम को इल्मे इमामत से पता था तो उन्होंने फिर शादी क्यों की। देखिए वो जिस तरह रसूल को इल्मे इमामत से पता था और उनकी कुछ बीवियाँ ऐसी निकली और रसूल ने फिर भी शादी की, हज़रत नूह और लूत को भी इल्मे नबूवत से पता था उन्होंने शादी की, कुछ मसले हैं इसके अंदर भी। और दूसरा कि निफाक, रसूल की खिदमत में भी कितने अपराध ऐसे आते थे कि रसूल को इल्मे नबूवत से पता था कि अंदर से काफिर ने बज़ाहिर इस्लाम लेके आए हूँ यानी मुनाफिक, रसूल से हाथ मिलाते थे लेकिन रसूल इस्लाम अपना हाथ को पाक नहीं करते थे, मस्जिद नबी में आके बैठते थे रसूल मस्जिद से बाहर नहीं निकालते थे कि काफिर है तुम चलो मस्जिद से बाहर जाओ। तो इसी एतबार से बहुत सी मसले आते हैं। इस हवाले से जब दुश्मनी अहले बैत उसके अंदर जाहिर हुई तो मौलाना उसको तलाक दे दी, तलाक उसने ली और हाकिम में जो हाकिम था उस जमाने में काजी उसकी अदालत में चली गई। अच्छा, मौला ने तलाक देने के बाद ठीक है नासिबी थी दुश्मन अहले बैत थी उसका जितना मेहर था तो उसको दे दिया, तो कोर्ट में चली गई और उसने कहा कि इन्होंने ठीक है मुझे तलाक तो दे दी लेकिन मेरा मेहर मुझको नहीं दिया। अब जो हाकिम ने था जो काजी था उसने नोटिस भिजवाया इमाम को कि आप कोर्ट में आइए, बल्कि वो तो इमाम से ज़्यादा मरूफ भी था, इमाम की हैसियत से भी वाकिफ था। उसने कहा कि आप गवाह लेकर आइए कि आपने जो है पैसे दे दिए। इमाम ने कहा गवाह तो नहीं मेरे पास। तो उसने कहा ठीक है फिर इस्लाम का तकाज़ा कि आप कसम खाइए। इमाम ने कहा सिर्फ उसके था 400 दिरहम मेहर उस औरत का। इमाम ने कहा सिर्फ 400 दिरहम के लिए मैं नाम खुदा अपनी जबान के ऊपर लेकर आऊँ, ये लो 400 दिरहम मैं दोबारा देता हूँ लेकिन मैं सच्ची कसम भी नहीं खाऊंगा। जो झूठी कसम खाता है उसने गोया कुफर इख्तियार किया और जो सच्ची कसम खाता है वो गुनाहगार हो जाता है, यानी गुनाहगार उन मायनों में नहीं कि उसने कोई गुनाह किया, बल्कि गुनाहगारों जैसा काम तुमने कर लिया, जिस तरह वो झूठी कसम खाने वाला काफिर के मायने के काफिर ने जैसा काम तुमने कर लिया। तो इस हवाले से भी अगर आप देखें तो सच्ची कसम खाने की कितनी ममानियत है। तो झूठी कसम की एक कसम तो है हराम कसम, उसमें एक तो आम तरीके से कसम खाना, एक कसम बरात उल्टे तरीके से कसम खाना, वो तो रसूल ने कहा वो मैं वैसे उससे बरी हो जाता। एक है वाजिब कसम, वाजिब कसम कभी कभार कसम खाना वाजिब भी हो जाता है, जब आपकी जान और माल और इज्जत इस तरीके से जा रही है और बगैर झूठी कसम खाए बचा ना सकते। मसलन हुकूमत ने कुछ इतने ज्यादा टैक्स लगा दिया आपके ऊपर, या कस्टम के माल में इतने ज्यादा गैर इस्लामी टैक्स आप पर लग गया, तो उलमा ने यहाँ तक कहा कि उस वक्त अपनी झूठी कसम अगर आप खा ले, मसलन वो कहे कि भाई क्या फलना फलना चीज़ इसमें मौजूद है, मसलन आप यकीन दिलाने के लिए उसको अगर कसम खा लें झूठी भी, तो बल्कि उलमा ने कहा वाजिब तक हो जाता है झूठी कसम खाना अपने माल मोहतरम को मोमिन को बचाने के लिए। बल्कि यहाँ तक रिवाज माल की इतनी मजम्मत भी आप सुनते हैं, लेकिन एक जानब यह भी आता है कि मोमिन अगर अपने माल मोहतरम को बचाते हुए मारा जाए तो ऐसा ही है जैसे दीन को बचाते हुए मारा गया। तो झूठी कसम इन मौकों पर खाना वाजिब हो जाती है। एक है मुस्तहब कसम, मुस्तहब कसम जब इतना ज्यादा तो आपको मसलन हुकूमत कुछ ऐसे टैक्स लगा दे, जैसे कि खुद जुरारा इमाम के पास है कि मौला अच्छा उस जमाने में खेतों पर भी टैक्स वसूल किया जाता था, इसको उशूर कहा जाता है, कहा कि अगर हम उस वक्त झूठी कसम खा लें कि हमारे यहाँ इतनी पैदावार हुई है तो हम पे इतना ज्यादा वो टैक्स लगा देगा। इमाम ने कहा फिर तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम झूठी कसम खाओ और अपने माले मोहतरम को बचाओ, अगर 30 दिरहम से कम टैक्स लगाए तो फिर झूठी कसम ना खाना और टैक्स दे देना, लेकिन अगर 30 दिरहम से ज्यादा टैक्स लगाए तो तुम उस वक्त झूठी कसम खा लेना, क्योंकि मेरे नजदीक झूठी कसम खाना इस मौके पर आहलुम मिनत तमरे वज़बत, मुझको खजूर और शहद की मिठास से भी ज्यादा पसंद है। ये दूसरी मुस्तहब कसम जब इंसान पर कुछ ऐसे मौकों पर गिरफ्तार हो जाए कि उसका ज्यादा माल जा रहा हो वो कसम खा के बचा सकता हो। और एक है मकरूह कसम, मकरूह कसम तो हर सच्ची कसम खाना मकरूह, ये तो बस याद रख लीजिए। और फिर एक आखिरी चीज मुबाह कसम, जो हाकिम शरा की अदालत में कोर्ट में जब जो कसम खाई जाती है, मसलन आपने कोई चीज यानी हाकिम शरा आपसे कोई कसम खिलवा रहा है कि आप कसम खाएंगे मसलन मकान आपका, उस वक्त जो आप कसम खाएंगे वो मुबाह कसम है। जो कसमों की पांच कसम हराम वाजिब मुस्तहब मकरूह मुबाह, ये पांचों कसम आम है। अलबत्ता कोई उस अंदाज की अगर कोई कसम खाए, मसलन मैं हज़रत अब्बास की कसम खाता हूँ, इमाम हुसैन की कसम खाता हूँ, तो ऐसी ये बात याद रखिए इसमें अल्लाह का नाम आए सिर्फ उस कसम का पूरा करना वाजिब है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम या आपके सर की कसम इस तरह की जो लोग बात नहीं, कोई भी कसम का पूरा करना वाजिब नहीं। अलबत्ता अगर इमामों की कसम आप खाएं हज़रत अब्बास की या इमाम हुसैन की और उसको पूरा ना करें तो लोग उसको तौहीन समझें इमामों की, तो फिर उस कसम का भी पूरा करना वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा मामला हो कि तौहीन वगैरह इमामों की ना समझी जा रही हो तो फिर पूरा करना उसको वाजिब नहीं रहता।
النجم يا صاحب السماء